चैप्टर 28 बका सूफी साधक की दशा विशेष जिसमें वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। उदाहरण, इस हाल या प्रलयावस्था के दो पक्ष हैं, त्याग पक्ष और प्राप्ति पक्ष। प्राप्ति पक्ष के अंतर्गत बका परमात्मा में स्थिति वज्र और शव है, जैसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 143। वज्र बीज सृष्टि के पूर्व के ब्रह्म की स्थिति जिसमें वह अपने को अपने में ही समेटे हुए रहता है। उदाहरण, सर्गोन्मुख होने से पहले वह वज्र बीज अव्यक्त था, वज्र बीज वी रऊ अस ओहिन रंग न भेद, जैसे गथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 151। बद्ध हृदय शेष सृष्टि से अलग अपनी पृथक सत्ता का बोध कराने वाले और जगत के कार्य व्यापारों को अपने व्यक्तिगत हानि लाभ से संबद्धता करके देखने वाला हृदय। उदाहरण, जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए हुए इस क्षेत्र शब्द या अनंत रूपात्मक सृष्टि के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम हानि लाभ सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार में बद्ध रहता है। रसमय मानसा प्रश्न संख्या 5। बहमन पारसी धर्मत में स्वीकृत परम ब्रह्म के नीचे की स्थिति रखने वाली एक ज्योति स्वरूप सत्ता। उदाहरण, परम ब्रह्म के नीचे एक और ज्योति स्वरूप की भावना पश्चिम की पुरानी जातियों में थी, जैसे प्राचीन मिस्रियों में लोगस की, यहूदियों में कबाला की और परसियों में बहमन की, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 144। 12 चक्र मूलाधार से चलकर ब्रह्म रंध्र तक नाथ योगी 6 चक्रों की स्थिति मानते हैं, कहीं कहीं 9 चक्रों की कल्पना भी की गई है। आचार्य शुक्ल ने 12 चक्रों की बात कही, संभव है किसी परंपरा में 12 चक्रों की स्थिति भी मान्य होगी। अनाहत चक्र में 12 दलों को के कमल की कल्पना की गई, संभव है आचार्य शुक्ल ने 12 दलों को ही 12 चक्र लिख दिया हो। उदाहरण, जागृत होने पर कुंडलिनी हस्त कमल और 12 चक्रों को पार करती हुई ब्रह्मरंध्र या मूर्ध्य ज्योति तक चली जाती है, जैसे ग्रंथालय भूमिका पृष्ठ संख्या 62। 12 मासा जब वर्ष के 12 महीने का वर्णन वियोग श्रृंगार के अंतर्गत उद्दीपन विभाग की दृष्टि से किया जाता है तो इस प्रकार के वर्णन को 12 मासा कहते हैं। उदाहरण, इस 12 मासे में वर्ष के 12 महीने का वर्णन विप्रलम्ब श्रृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से है, जैसी ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 45। बाह्य करण ग्राह्य भावना ईश्वर की ऐसी भावना जो बाह्य इंद्रियों आँख कान नाक आदि के द्वारा ग्राह्य हो। उदाहरण, कहीं इसके आगे बढ़कर विष्णु शिव इन देवों में अर्थात मनुष्य से ऊंची कोटि में बाह्य कारण ग्राह्य भावना भी हुई। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 81। बाह्यार्थ निरूपण बाह्यार्थ निरूपिणी बाह्य जीवन एवं जगत के कार्य व्यापार का निरूपण करने वाली। उदाहरण, प्रबंध काव्य सदा बाह्यार्थ निरूपक होता है, गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 48। बाह्यार्थवाद वह दार्शनिक मत जो भूत और आत्मा दोनों को भिन्न सत्ताएं मानता है और बाह्य जगत को वास्तविक कहता है। शुद्ध बाह्यार्थवादी यह मानते हैं कि वस्तु का इंद्रियक बोध होते ही हमें उसका ज्ञान हो जाता है, बीच में मानसिक संस्कारों की मध्यस्थता आवश्यक नहीं। उदाहरण, अतः स्थूल एकेश्वरवाद और ब्रह्मवाद में भेद हुआ कि एकेश्वरवाद के भीतर बाह्यार्थवाद छिपा है, क्योंकि वह जीवात्मा परमात्मा और जड़ जगत तीनों को अलग अलग सत्व मानता है। ब्रह्मवाद में शुद्ध परमात्मा के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं मानी जाती, आत्मा और परमात्मा में भी कोई भेद नहीं माना जाता, जैसे ग्रंथाली भूमिका पृष्ठ संख्या 135। विचार विविध प्रकार की विशिष्ट वस्तुओं में लक्षित होने वाले सामान्य सत्य की अवधारणा, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इसमें तर्क और विश्लेषण की आवश्यकता है। उदाहरण, काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। रसमय मानसा पृष्ठ संख्या 310। बिंब मानस प्रतिभा ऐसी रूप योजना जो मन के समक्ष वर्ण्य वस्तु को प्रत्यक्ष कर दे। उदाहरण, काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। रसमय मानसा पृष्ठ संख्या 310। बिंब ग्रहण किसी वस्तु या व्यक्ति के समग्र एवं संश्लिष्ट स्वरूप के मानसिक प्रतीति करना, कार्य में दृश्य चित्रित करते समय बिंब ग्रहण कराने की आवश्यकता होती है। उदाहरण, बिंब ग्रहण वही होता है जहाँ कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति और उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। उदाहरण, दृश्य चित्रण में केवल अर्थ ग्रहण कराना नहीं होता, बिंब ग्रहण कराना भी होता है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 86। बिंब प्रतिबिंब भाव, किसी वस्तु और दर्पण में पड़ने वाली उसकी छाया में जो सादृश्य संबंध होता है उसे बिंब प्रतिबिंब भाव कहते हैं। उदाहरण, यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणीतशील है तो हर्षपुलक, और गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कुढ़न, शोक है तो करुणा, आनंदोत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता, तुलसीदास जी के हृदय में प्रतिबिंब भाव विद्यमान है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 54। बिंब प्रतिबिंब रूप, बिंब और प्रतिबिंब का रूपाकार समान होता है। अलंकार विधान के अंतर्गत जब उपमेय और उपमान के रूप बिंब प्रतिबिंबवत समता रखते हैं तो इस आदेश को बिंब प्रतिबिंब रूप कहा जाता है। उदाहरण, सादृश्य से हमारा अभिप्राय बिंब प्रतिबिंबित रूप और साधर्म से वस्तु प्रतिवस्तु धर्म से है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 357। उदाहरण, सादृश्य से हमारा अभिप्राय बिंब प्रतिबिंब रूप और साधर्म से वस्तु प्रतिवस्तु धर्म है। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 111। बिंबवाद, छायावाद के उन्मेष काल में कुछ आलोचकों द्वारा छायावाद के ही अर्थ प्रयुक्त हो शब्द। उदाहरण, इसके इतिहास की ओर ध्यान न देने के कारण अनेक प्रकार की मनमानी व्याख्याएं हिंदी पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर निकला करती हैं, जिनमें से कहीं रहस्यवाद और छायावाद का कल्पित भेद समझाया जाता है, कहीं छायावाद ही के अर्थ में एक और बिंबवाद खड़ा करके दोनों को वस्तुवाद के साथ विरोध कुछ शब्दाडंबर के साथ दिखाया जाता है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 151। नोट, आचार्य शुक्ल ने छायावाद के अर्थ में बिंबवाद शब्द के प्रयोग को अनुचित माना है। उनका मत है कि दर्शन की भाषा में बिंब शब्द वस्तु के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, जो मूल वस्तु प्रतिबिंब या छाया फेंकती है। शास्त्रीय भाषा में ही वह मूल वस्तु ही बिंब है। बीज भाव, प्रबंध काव्य के प्रधान पात्र में प्रेरक रूप में विद्यमान भाव, जिसकी प्रेरणा से घटना चक्र परिचालित होता है और अन्य अनेक भावों का स्फुरण होता है। बीज भाव की सत्ता स्थायी भाव और अंगी भाव से पृथक होती है। करुणा और प्रेम, ये दो ही भाव बीज भाव है हो सकते हैं। लोक मंगल की साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा होता है। रामायण का बीज भाव करुणा है। लोक मंगल की सिद्धावस्था को महत्व देने वाले काव्यों का बीज भाव प्रेम है। उदाहरण, जिस प्रकार किसी आश्रय के भीतर कोई एक भाव या स्थायी होता है और अनेक भाव तथा अंतर दशाएं उसके संचारी भाव रूप में होते हैं, उसी प्रकार किसी प्रबंध काव्य के प्रधान पात्र में कोई मूल प्रेरक भाव या बीज भाव रहता है, जिसकी प्रेरणा से घटना चक्र चलता है और उनके भावों के स्फुरण के लिए जगह निकलती चलती है। इस बीज भाव को साहित्य ग्रंथों में निरूपित स्थायी भाव और अंगी भाव दोनों से भिन्न समझना चाहिए। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 65। विभत्स, जब जुगुप्सा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त होता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। इसी उदाहरण, इसी लंका दहन के भीतर यह विभत्स कांड सामने आता है। हाट बाट हाटक पिघल घी सो घनो कनक कराही लंक तलफति ताए सो नाना पकवान जातु धान बलवान सब पागी पागी ढेरी कीनो भली भांति भाए सो। को स्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 63। बुद्धि तत्व, इंटेलेक्चुअलिटी, रचना की वह प्रकृति जिसमें बौद्धिक सघनता पर विशेष बल दिया जाता है। उदाहरण, एक में बुद्धि प्रधान रचना बुद्धि तत्व इंटेलेक्चुअलिटी के साथ पूरा सहचर है और दूसरे में रहस्यवाद में विच्छेद, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 138। बुद्धिवाद, वह सिद्धांत जो गणितीय पद्धति पर जीवन और जगत की समस्याओं का निर्भ्रांत समाधान करता है। गणित की पद्धति से तात्पर्य अंतःप्रज्ञा द्वारा निर्भ्रांत रूप में स्वीकृत स्वयं सिद्ध व्यापारों को आधार बनाकर निगमन द्वारा सर्वथा निश्चित निष्कर्षों तक पहुंचना है। कामायनी में प्रसाद ने ईड़ा को व्यवसायत्मिकता बुद्धि का प्रतीक माना है। इससे जुड़कर मनु बुद्धिवादी होते हैं और सारस्वत प्रदेश में यांत्रिक सभ्यता का विकास करते हैं। प्रसाद के अनुसार आज की यांत्रिक सभ्यता बुद्धिवाद की देन है। बुद्धिवाद को प्रसाद अधूरा जीवन दर्शन मानते हैं। उदाहरण, यह चिंता बुद्धि मति या मनीषा का ही एक रूप कही गई है, जिसमें आरंभ में ही बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 685। बुद्धि व्यवसायत्मक विचारात्मक बुद्धि व्यवसाय संबंधी केवल इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभूति तक सीमित न रहकर बुद्धि की प्रक्रिया से ज्ञान उपलब्ध करने की चेष्टा बुद्धि व्यवसायत्मक चेष्टा कही गई है। उदाहरण, जो जो अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार का विकास होता है और सभ्यता बढ़ती है, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। रस मीमांसा पृष्ठ संख्या 20। बोध दशा, किसी नई वस्तु को देखकर उसकी जानकारी प्राप्त करना दर्शन वृत्ति की बोध दशा है। उदाहरण, दर्शन वृत्ति की बोध दशा भी होती है और रागात्मिका दशा भी। उदाहरण, दर्शन वृत्ति की बोध दशा भी होती है और रागात्मिका दशा भी। रस मीमांसा पृष्ठ संख्या 71। बोध वृत्ति, चित्त की वह वृत्ति जिसे किसी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान या बोध होता है। उदाहरण, दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ज्ञान बोध वृत्ति और भक्ति रागात्मिका वृत्ति है। ब्रह्मरंध्र, मानव शरीर में आज्ञा चक्र के ऊपर सातों और अंतिम चक्र सहस्रार है। यहाँ पहुँचने के द्वारा ब्रह्मरंध्र है। इसे मूर्धा में स्थित एक प्रकार का विवर भी कहते हैं। उदाहरण, जागृत होने पर कुंडलिनी चंचल होकर सुषुम्ना नाड़ी के भीतर सिर की ओर चढ़ने लगती है और हृत कमल और 12 चक्रों को पार करती हुई ब्रह्मरंध्र या मूर्ध ज्योति तक चली जाती है। जैसे ग्रंथालय भूमिका पृष्ठ संख्या 62। ब्रह्मवाद, वह दार्शनिक मत जो विश्व में मात्र ब्रह्म की सत्ता को ही सत्य मानता है, जिस तत्व से सारे भूत उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रम में जीवित रहते हैं और अनंत जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनंत है। निरपेक्षता अनंतता स्वतंत्रता और अद्वितीयता ब्रह्म का अनिवार्य लक्षण है। उदाहरण, एकेश्वरवाद, स्थूल देववाद और अद्वैतवाद, सूक्ष्म साक्षात्कार आत्मवाद, ब्रह्मवाद जैसी ग्रंथावली भूमिका 135। अतः आगे चलकर उन सब देवताओं का तत्व दृष्टि से एक में समाहार करके ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा हुई। सूरदास पृष्ठ संख्या 3। पीछे कवि ने भारतीय ब्रह्मवाद और सूखियों की प्रेम भावना मिलाकर जो निर्गुण संत मत खड़ा किया, उसमें भी ईला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आदि भीतरी चक्रों की पूरी चर्चा रही। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 163। ब्राह्मण काव्य, वह काव्य जो शुभ और सात्विक भावों के प्रसार द्वारा अशुभ और तामस भावों को हटाकर जीवन में सौंदर्य और मंगल का विधान करता है, करना चाहता है। उदाहरण, वर्ण व्यवस्था से शब्द लें तो एक ब्राह्मण काव्य है, दूसरा क्षत्रिय काव्य। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 48। ब्रीड़ा, अपने द्वारा किए गए कार्य के अनौचित्य के बोध से होने वाले चित्त संकोच, ब्रीड़ा या लज्जा, मुख का विवर्ण हो जाना, आंखें बंद कर देना, सिर झुका लेना आदि इसके शारीरिक लक्षण है। उदाहरण, सीता जी द्वारा श्रृंगार के संचारी भाव ब्रीड़ा की व्यंजना के लिए कैसा उपयुक्त अवसर चुना गया है। गोस्वामी तुलसीदास पृष्ठ संख्या 57। उदाहरण, असूया या ब्रीड़ा को यदि हम स्वतंत्र भाव के रूप में लेकर उसका विभाव अनुभव और संचारी भाव के द्वारा वर्णन करें तो सुनने वाले को ईर्ष्या या लज्जा का अनुभव न होगा। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 90।